इवन जो हमारी बाहर इंसानों के बाहर चलती हुई कायनात है, इसका जो इकोसिस्टम है, उसमें भी बैलेंस सिर्फ इसलिए मेंटेन्ड है कि अल्लाह ने उनको एक बैलेंस्ड नेचर दी है। अगर दुनिया में से भेड़ें खत्म हो जाए मिसाल के तौर पर, तो शेर एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएंगे, एंड वाइस वर्सा, अगर शेर एक्सटिंक्ट हो जाएं तो भेड़ें अल्टीमेटली साइंटिस्ट इकोलॉजिस्ट बताते हैं खत्म हो जाएंगी। क्यों? इसलिए कि शेर नहीं होगा और भेड़ें जो हैं वो बढ़ती जाएंगी, पॉपुलेशन में बढ़ती जाएंगी इतना कि वो ऑलमोस्ट अपने एरिया की सारी ग्रास खा जाएंगी और वक्त के साथ साथ वो स्टार्व करना शुरू कर देंगी। सो इट्स अ कंप्लीट बैलेंस इन द इकोसिस्टम। अल्लाह ने किसी को किसी पर फोकियत नहीं दी है। अल्लाह की नजर में शेर ज्यादा अहम नहीं है भेड़ के मुकाबले में। अल्लाह की नजर में मच्छर और मक्खी के दरमियान में मक्खी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्लाह की नजर में कोई सांप और हाथी में मुकाबला नहीं चल रहा कि सांप कमजोर हो गया और हाथी मजबूत हो गया या वाइस वर्सा। अल्लाह ने बैलेंस मेंटेन करने के लिए सबको सबकी नेचर, सबको सबके रोल्स दिए हैं। इकोसिस्टम को समझते हुए तो हमें यह बात समझ आ जाती है। मर्द और औरत के दरमियान में बैलेंस की बात आती है तो हमें यह बात क्यों नहीं क्लिक करती है? ये बात क्लिक करेगी जब आप कुरान के सामने कॉन्स्टेंटली बैठेंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लग जाएंगे। तब आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि मैं ज्यादा अच्छी और वो बुरा। याद रखें, कामयाब इंसान असल में वो होता है, और ये कामयाबी की डेफिनेशन आपको रिलीजियस सर्कमस्टांसेस से बाहर भी मिलती है। कामयाब इंसान वो होता है जो किसी दूसरे को दबाकर, उसको पीस कर खुद खड़ा होने की कोशिश नहीं करता। कामयाब इंसान वो होता है जो खुद भी खड़ा होता है और अपने साथ 10 और लोगों को खड़ा करने की फिक्र में रहता है। दिस इज अ सक्सेसफुल पर्सन, और यही डेफिनेशन हमें इस्लाम ने दी है। इस्लाम में ये नहीं है कि आप और मैं अपनी तारीफ करने के लिए जरूर किसी दूसरे को बुरा कहें। बाज़ औक़ात हमारी घरेलू पॉलिटिक्स में ये बात चलती है, अगर बेचारे किसी सास ने गलती से अपनी 3 बहुओं में से एक की तारीफ कर दी, बाकी 2 भी सामने बैठी थी, क्या समझा जाता है? इट्स अंडरस्टूड उसकी तारीफ की है, इसका मतलब है हम बुरे हैं। इसका ये मतलब नहीं होता। जरूरी थोड़ी अब एक ही लाइन में इंसान सबकी तारीफ करना शुरू कर दे। इसी तरह से बच्चों में आपने एक बच्चे की तारीफ की, बाकी दोस्त क्या समझते हैं? हाँ, इनको तो मोहब्बत ही सिर्फ इससे है, यही लाडला है इनका, हम दो तो शायद जो है वो बच्चों का फेवरेट जुमला, हमें तो आप कहीं से लगता है अडॉप्ट करके ले आई थी। ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ने हर इंसान को रोल एलोकेशन दिए हैं और अल्लाह चाहता है कि इंसान इस बैलेंस को डिस्टर्ब ना करे। जितना इंसान इस बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहा है, चाहे वो हमारा दुनिया का एनवायरमेंट हो, माहौल हो, समुन्दर हो, जमीन हो, आप देख रहे हैं कि उतनी पोल्यूशन बढ़ती जा रही है। जितना हम दुनिया का इकोसिस्टम डिस्टर्ब कर रहे हैं, उतना नेचुरल क्लामिटीज दुनिया ऑब्जर्व कर रही है। हर चीज दूसरी चीज से कनेक्टेड है, इसीलिए मर्द और औरत के दरमियान में भी फसाद बढ़ता जा रहा है, भाई और बहन के दरमियान में रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है, शौहर और बीवी के दरमियान में फ्रिक्शन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमने बैलेंस आउट करना शुरू कर दिया है। हम अल्लाह के कलाम से दूर हैं, अल्लाह के कलाम की समझ से दूर हैं, इसलिए हमारे लिए इस वक्त दुनिया और हमारे अपने दिलों के अंदर एक तूफान बरपा है। बाहर की कायनात में इस वक्त पोल्यूशन है, और जितनी इंसान ने इस वक्त पोल्यूशन फैलाई है, इट्स एक्चुअली ड्यू टू कंज्यूमर मेंटेलिटी, जो बेसिकली बाहर पोल्यूशन फैली है, अपना फायदा, अपनी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए, बाकी जितनी जगहों को आप पोल्यूट कर दें, कोई इंसान इसकी फिक्र नहीं करता। मेरी गाड़ी साफ रहे, मैंने अपना जूस का डब्बा बाहर फेंक दिया, कोई इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। आप छोटे से छोटे मोहल्ले से लेकर आप इलीट से इलीट जगह चली जाए, क्या सिर्फ छोटे मोहल्लों के अंदर कचरा बाहर होता है? वो बेचारे कचरा अपना बाहर डाल जाते हैं, इसलिए कि उनके पास तो कोई ट्रक नहीं आता जो उनसे उनका कचरा उठाएगा और अपने गाड़ी में डाल के ले जाएगा। उनको भी तालीम देने की जरूरत है। हम तो पढ़े लिखे हैं, हमें क्या मसला है? हम क्यों गाड़ी का शीशा अपना जो है वो रोल करते हैं और उसके बाद अपना गार्बेज जो है वो बाहर फेंक देते हैं? इट्स कॉमन, चाहे हम शहर के अंदर हो, चाहे हम हाईवे पर हो। जिस वक्त आप अपने एरोप्लेन से निकलकर बाहर पैसेंजर जाते हैं, कभी देखा करें कितना कचरा फैला कर जाते हैं? पढ़े लिखे लोग ही तो बैठे होते हैं ज्यादातर, तो हम खुद दुनिया को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसी तरह से हर इंसान अपनी फिजिकल सेहत का दुश्मन बनता है जब वो बैलेंस आउट करता है और अपनी डाइट में जंक फूड को कॉन्स्टेंटली बढ़ाता जाता है। जितना जंक फूड हम खाते हैं, जितना प्रोसेस्ड फूड हम खाते हैं, ये असल में क्या करता है कि ये हमारी फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। और हमें आज अपने बच्चों को वापस बैलेंस्ड डाइट पर लाने की बहुत सख्त जरूरत है। हमारे बच्चे नूडल्स पर, स्पेगेटीज पर, चिप्स पर और बर्गर्स पर पल रहे हैं। आप सोचें, खासतौर पर मुझे बेटियों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ये फीलिंग्स आती हैं। आप और मैं अपनी नानी दादी को देखते थे तो हमें वो बहुत स्ट्रांग हेडेड नजर आती थी। मेजोरिटी के 8 से 9 बच्चे होते थे विद नॉर्मल डिलीवरी। हमारी जनरेशन में अब वो 8 से 9 कम होते होते from 2 to 4 मैक्सिमम, किसी के बहुत भी होंगे तो 5 होंगे। आजकल तो कोई रेयर होगा जिसके 9 बच्चे हैं। हाँ, जिसके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बेहतरीन सदका जारिया बनाए उनका। लेकिन आप अपनी औलादों को सोचें, अपनी बेटियों को सोचें, जब वो मां बनेंगी तो उनमें वो प्रेशर लेने की फिजिकली या इमोशनली वो स्ट्रेंथ है जो आप में मौजूद थी, या जो आपकी वालदा में मौजूद थी, या जो आपकी नानी में मौजूद थी, बहुत कम होती जा रही है। तो जहां दीन हमें बहुत सी और चीजों की तरफ मुतवज्जो करता है, वहां हमें इस बात के ऊपर भी फोकस करना चाहिए कि अपने बच्चों को बैलेंस डाइट की तरफ लेकर आए। ज्यादा चीनी खाएंगे तो क्या होगा? बीमारियां आ जाएंगी। और चीनी बिल्कुल ही गायब कर देंगे तो क्या होगा? एनर्जी ड्रेन्ड होना शुरू हो जाएगी। सो वी नीड अ बैलेंस। सब्जियां, दालें, गोश्त, आपका बैलेंस तरीके से जाए। इस्लाम मुझे और आपको जो ये एक वन लाइनर स्टेटमेंट दे रहा है, वादा अल मीजान, इट हैज अ ह्यूज कॉन्सेप्ट इन इट कि आपकी और मेरी जिंदगी पूरी की पूरी जो है वो बैलेंस को मैनिफेस्ट करे। इंसाफ असल में इस्लाम का तकाजा है हर फील्ड के अंदर। आगे फरमाया आयत नंबर 8 में, अल्लाह ततगाउ फिल मीजान, देखो अल्लाह के बैलेंस में डिस्टरबेंस नहीं करना, उसमें तत्काउ ट्रांसग्रेस नहीं करना। अल्लाह की बताई हुई जो हदूद हैं, जो हदूद के अंदर अल्लाह कहता है कि यहां तक रहोगे तो बैलेंस रहेगा, उसमें ट्रांसग्रेशन नहीं करना, उनको मत तोड़ना। यहां पर भी लफ्ज आपको मीजान मिल रहा है, और पिछली आयत में भी वादा अल मीजान आया था। मीजान जनरली आम जुबान में इस्तेमाल किया जाता है स्केल के लिए, तराजू के लिए। लेकिन इसकी लिंग्विस्टिक मीनिंग्स को अगर आप डेप्थ में समझेंगी तो इसका मतलब होता है जस्टिस। इन आयात में भी ये जस्टिस के लिए आया है, बैलेंस के लिए आया है, इंसाफ के लिए आया है। और याद रखें, इस्लाम का बताया हुआ अमन कायम नहीं हो सकता जब तक कि आप अपने जिस्म, अपने घर, अपने खानदान, अपने माशरे में इस जस्टिस को ना इनकॉर्पोरेट कर दें। अमन नहीं आ सकता। अमन आएगा जब आप जस्टिस को अपनी जिंदगी का रेगुलर हिस्सा बना लेंगी। तो अल्लाह का शाने रहमानी का एंगल, जिसमें अदल शामिल है, उसको यहां बता दिया गया। अल्लाह रहमान है, लेकिन रहमान ने यह वाजे कर दिया, कायनात अदल के बगैर नहीं चल सकती। कायनात में अमन अदल के बगैर कायम नहीं हो सकता। तो पिछली आयत में आसमान के बैलेंस की बात थी, वस्समाउ रफअहा, अल्लाह ने उसको बुलंद किया, ववदअ अल मीजान, और अल्लाह ने मीजान सेट कर दिया। फिर आयत में अल्लाह ने वाजे कर दिया कि देखो इसके अंदर सरकशी मत करना, इस बैलेंस को आउट ना करना। अगली आयत जो आयत नंबर 9 आ रही है, इसमें आपको इंसानों को रहमान हुक्म देता हुआ मिल रहा है वाजे तौर पर। अल्लाह ने फेले अमर कमांड के अंदर हम मुसलमानों को, हम इंसानों को डायरेक्ट ऑर्डर दिया है, वह अकीमुल वजन बिल किस्ती वला तुखसिरुल मीजान, और इंसाफ के साथ तोल कायम करो, इंसाफ के साथ बैलेंस करो, और वजन को कम ना करो। वह अकीमुल वजन बिल किस्ती वला तुखसिरुल मीजान, इसमें फेले अमर आ गया, रहमान का हुक्म है कि देखो अपनी डेली लाइफ में अपनी प्रेजेंस से हर इंसान को बैलेंस्ड इंसान बनना है, हर इंसान को अदल पर रहना है। एंड दिस अदल इज एक्चुअली द बॉटम लाइन। बॉटम लाइन याद है? दिस अदल इज द फितरा। अल्लाह ने हर इंसान की फितरत में ये बैलेंस रखा है। अल्लाह ने इंसान की स्पीशी को ये बॉटम लाइन दी है। इसी को फितरा कहते हैं, इसी को बैलेंस्ड एटीट्यूड कहते हैं, इसी को ऑब्लिगेशंस पर जिंदगी गुजारना कहते हैं, इसी को कहते हैं कि जिसके बाद इंसान आगे बढ़ता है तो एहसान के दर्जे एडॉप्ट करता है। यहां लफ्ज आया है बिल किस्ती, कौफ सीन तो, असल में किस्तास से है, किस्तास कौफ सीन तो अलिफ सीन लैटिन वर्ड है जो बाद में फिर अरबी जुबान में इस्तेमाल हुआ और फिर अरबी से इसको अंग्रेजी में भी इनकॉर्पोरेट किया गया। किस्तास से किस्त बना है जिसका मतलब है आसान जुबान में जस्टिस, इंसाफ। किसको कहते हैं किस्त? एक तो आपने सिंपल डेफिनेशन समझ ली इंसाफ, अब जरा इसको अदल के मुकाबले में समझें कि किस तरह से इसको अदल से अलग किया जाता है। किस्त कहते हैं किसी का हक पूरे का पूरा ऐसा दे देना कि उस पर कोई जुल्म ना करना, यानी जिसका जो हक आप पर बनता है वो मुकम्मल उसको अदा कर देना। हर इंसान चाहता है कि उसको उसके तमाम राइट्स दिए जाएं। इसका दूसरा पार्ट क्या है? हर इंसान को चाहिए कि वो बाकी तमाम इंसानों के जो हकूक उस पर आते हैं वो अदा कर दे। हम कहते हैं क्यों? अगेन टसल, उसने नहीं किया तो मैं क्यों करूं? एट द एंड ऑफ द डे अगर सामने वाला आपके हकूक अदा नहीं भी कर रहा और आप कर रही हैं, आप अपना फायदा कर रही हैं, आप रहमान के साए में, आप रहमान की रहमत के शेड में अपने आप को लाने के लिए एफर्ट कर रही हैं। और ये याद रखिएगा फैमिलीज के अंदर खास तौर पर, एक इंसान अदल पर कायम होता है तो कुछ दिन बाद, कुछ मंथ्स के बाद या कुछ सालों के बाद लोग उसको अप्रिशिएट करते जरूर हैं, लोग उससे अच्छी बात सीखते जरूर हैं। हाँ, सबर के साथ अदल करने वाले को कायम रहना होता है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ मेंशन कर दिया कि अपनी तरफ से हर तरह से बेहतरीन तरीके से इंसाफ को फैलाने वाले बन जाओ। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया का कॉल आता है, वो कहते हैं कि जिस स्टेट में, जिस कंट्री में अदल कायम हो जाए, यानी जिस कंट्री में इंसाफ का ख्याल रखा जाए, फिर चाहे वो काफिर स्टेट हो, वहां पर फिर अल्लाह ताला इंसाफ की बरकत को शो करता है। दुनियावी लिहाज से आपको फायदा नजर आता है वहां पे, वहां पर आपको तरक्की, डेवलपमेंट, वो मुल्क आपको फ्लरिश करता हुआ नजर आता है। इसी तरह इमाम इब्ने तैमिया आगे लिखते हैं कि अल्लाह बरकत को ले जाता है उस जमीन से, चाहे वो मुस्लिम जमीन हो जहां लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। द सेम सिनेरियो अप्लाइज इन द होम्स, जब घरों के अंदर अदल का मामला रहता है बरकत रहती है, जब घरों के अंदर बैलेंस को आउट किया जाता है बरकत खत्म हो जाती है। अब हम सबको अपने अपने घरों में जाकर थोड़ा सा देखना है, हमारे घर में अगर बरकत की कमी हो रही है तो हम कहाँ कहाँ बैलेंस आउट कर रहे हैं, हम कहाँ कहाँ किस किस एंटिटी का हक अदा नहीं कर रहे। अगर आप स्टेट लेवल पर देखें तो आप आराम से आज ऑब्जर्व कर सकती हैं कि बहुत से मुस्लिम ममालिक जो अदल के सिस्टम पर आगे नहीं बढ़ रहे, वो आपको बाकी दुनिया से बहुत पीछे नजर आ रहे हैं, और बहुत से नॉन मुस्लिम ममालिक जहां पर अदल, जहां पर सोशल जस्टिस, जहां पर सोशल राइट्स देने की बहुत फिक्र की जाती है, वो आपको फ्लरिश होते हुए दुनियावी लिहाज से यकीनन नजर आ रहे हैं। तो ये हम मुसलमानों के लिए सोचने की बात है कि हम शुरू कहाँ से करें। अब इस वक्त ये बात नहीं हो रही कि हम सब जो है वो बड़े बड़े प्ले कार्ड्स पकड़ के प्रेस क्लब के बाहर खड़े हो जाएं और कहें कि पाकिस्तान में इंसाफ कायम करो, ये करने की जरूरत नहीं है अभी मुझे और आपको। अपने घरों में हमने अदल कायम कर दिया, पहले अपने घरों के अंदर अदल कायम करने की जरूरत है। पहले अपने 5 फुट के जिस्म पर अदल कायम कीजिए, पहले अपने जिस्म और अपने रूह के अदल को मेंटेन कीजिए, अपने घरों के अंदर, अपने रिश्तों के अंदर अदल को मेंटेन कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़कर ये काम करने के होते हैं। एक किताब है, लिख लीजिए और फिर इसको पढ़िएगा रमजान के बाद। बहुत सारे काम आपके रमजान के बाद के मैंने दे दिए अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आते जाएंगे, आगे तो देखें, अभी तो बहुत साइंस आने वाली है आगे की आयात में, बहुत सारी बुक्स बताने वाली हूँ मैं आपको। जो किताबें पढ़ने के शौकीन है उनको बहुत सारा कलेक्शन इंशाल्लाह मिल जाएगा। कितने लोग किताबें पढ़ने के शौकीन है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई लव दैट। इसके ऑथर लिखते हैं, अच्छा, देखिए एक बात और बता दूं, ये किताब किसी शिया स्कॉलर ने लिखी हुई है, सही है? किताबें पढ़ने से पहले, किताब कोई भी पढ़ी जा सकती है, जैसे बिल्कुल हम साइंस की कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, जैसे हम हिस्ट्री की कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, जैसे बिल्कुल हमें मना नहीं किया गया कि हम नॉन मुस्लिम्स की जो है रिलीजियस किताबें वो हम ना पढ़ें, बट उनका एक प्री रेक्विजिट है। इसी तरह दुनिया की भी बहुत सी किताबें हैं जो इस तरह की किताबें हैं, ताकि अल्लाह ताला उसमें से जो खैर है वो हमें दे दे, और जो उसमें कोई प्रॉब्लमेटिक चीज है हम उसके ऊपर से खामोशी से गुजर जाएं। ये फैक्ट है कि सिर्फ अंबिया और रसूल परफेक्ट होते थे, उसके बाद जितने भी लोग आए वो इंसान थे।